চিরদিনাতপিত জীবন চিরদিনাতপিত জীবন হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হাহা প্রভু কর দয়া হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এ হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হাহা প্রভু কর দয়া নরোত্তম লইল শরণ 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 নরোত্তম জয়া বৈষ্ণব ঠাকুর জয়া রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীল রূপ গোস্বামী জয়া বৈষ্ণব ঠাকুর রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীল রূপ গোস্বামী নিতাই গৌর হরিবল 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 নিতাই গৌর হরিবল 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 হরিবল
అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృందకి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకురుకి ప్రేమసుకు శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది శ్రీ గౌరభక్త బృందకి జయ రూప సనాతన శ్రీ జీవగోపాల భట్ట దాస రఘునాథుడు గోస్వామి ప్రభుపాదికి సంవేత గౌరభక్త బృందకి శ్రీ రూప గోస్వామి ప్రభుపాద తిరుభావకి శ్రీ గౌరిదాస్ పండిత్కి తాయి గౌరహరి ప్రేమానంది तो जैसे आप सभी जानते हैं आज श्रावणी द्वादशी तिथि हम सब जिनके चरण चिन्हों पर जिनके अनुगमन करके अपने भक्ति धर्म को सिद्धि करने के लिए ललायत हैं इसीलिए हम लोग कृपानुग कहा जाता है वही रसवत्ता श्री रूप गोस्वामी के आज तिरुभाव तिथि है जबकि आज गौरीदास पंडित की भी तिरुभाव तिथि लेकिन समयानुभाव के कारण हम कोई एकों की चर्चा करेंगे जबकि हम रूपानु कहे तो रूप गोस्वामी के बारे में कहते हैं अगर समय हो बाद में कबीर गौरीदास पंडित का भी आलोचना कर सकते हैं। रूप गोस्वामी जैसे आप ये मंच पर काल आप देखे थे नाटक उनके उद्भव यद्यपि उन्होंने ब्राह्मण वंशोद्भव थे क्योंकि उनके पूर्वजों ने कर्नाटक से आकर के बंगाल में निवास किए और अंततः उनके पिता श्री कुमार देव ने, जो बाकला चंद्रद्वीप में रहते थे, उनके पांच पुत्र से जो तीन मुख्य पुत्र है वो नित्य भागवत पार्षद थे। उनके घर के नाम था अमर, संतोष और बल्लभ। तीनों भाई पाठशाठ पढ़ने के बाद, व्याकरण और अन्य भाषा में विद्वता प्राप्त करने के बाद, जब उनका ख्याति, उनके गुण चतुर्दिग में व्याप्त होने लगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नवाब हुसैन शाह की नजर में ना आए ऐसे व्यक्ति। चंदन की पेड़ अगर घन जंगल में भी हो तो उसका सुगंधि और शीतलता के कारण तो प्रकट हो ही जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों भ्राताओं के जो गुण, जो उनके आचरण, जो उनके बुद्धि, ये चतुर्दिक से व्याप्त होने लगा और नवाब हुसैन शाह का नजर उनके ऊपर पड़ गया। तो कल अब देखे थे, उनको जोर करके अपने राज कार्य में उनको लगाया। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने नवाब हुसैन शाह, जो मुसलमान के अधिकारी थे, उनके उच्च पदवी पर काम करने लगे और काम के अनुसार उनकी भेष परिपाटी, मुसलमान की भेष परिपाटी, उसी प्रकार उनका व्यवहार, आचरण, फारसी भाषा, खान पान, रहन सहन लगभग सब इसी प्रकार था, ताकि उनको इस प्रकार देखने से कोई बड़े साधु भक्त भी समझ नहीं पाएगा कि ये कौन है, तो बहुत बड़े मुस्लिम है। और नाम भी ऐसा हो गया था, दबीर खास और साकर मल्लिक। लेकिन जब तक उनमें गोड़ देश, जो नवाब हुसैन शाह का कैपिटल था, राजधानी था, उसको अभी भी गोर नगर कहते हैं, गोर देश, रामकली मालदा डिस्ट्रिक्ट में, गंगा जी के किनारे, वहां पर उन्होंने राज कार्य में थे। लगभग सनातन गोस्वामी जो अमरदेव थे, जिनको साकर मल्लिक रूप में नामित किया गया, उन्होंने लगभग प्रधानमंत्री के दायित्व निभा रहे थे। और दबीर खास जो संतेश देव थे, उन्होंने राजस्व मंत्री का दायित्व निभा रहे थे। इतने बड़ी साधन पर, पदवी पर रहकर कार्य करते हुए राजा के लगभग लेफ्ट एंड राइट हैंड थे नवाब का। और इसी तरीके ही रहन सहन सब अनेकों वर्ष तक करते हुए, लेकिन जब तक राजभवन में रहते हैं, राज कार्य में, तो उनका भाव भंगी, मुद्रा, व्यवहार सब कुछ इसी था, मुसलमानी परिपाटी पर। लेकिन जब वो अपने वास में, अपने जो आवास था, क्योंकि प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री दो भाई हो, तो उनका तो अंदाज लगा लीजिए कैसा उनका रहन सहन, उनका वैभव भी होगा। मंत्री आवास था, महामंत्री का आवास, आजकल के जो महामंत्री होते हैं 5 साल के लिए, उनके आवास दिल्ली फिल्ली में जाएंगे तो कितने क्या परिपाटी, और तभी तो एक बार होते तो फिर 5 साल नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन से नहीं जीते, सिलेक्शन से होते थे। तो उनका तो जब तक रहे तब तक रहे, तो उनका आवास तो कैसे हुआ होगा, कैसे उनका जो व्यवस्था ऐसे हुआ होगा। लेकिन घर में जाकर के बिल्कुल सादा जीवन रहते थे दोनों भाई। उनके परिवार तो दूर से रहते थे, फतेहाबाद में, वहां उन्होंने शास्त्र चर्चा करते थे, हरि भजन में लगते थे, और कृष्ण लीला को स्मरण करते हुए राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, रूप सागर और कुंज आदि सब बनाए थे। ऐसे लोग कहा करते हैं कि वो रामकली का नाम रामकली नहीं रह गया था, कृष्णकली हो गया था। कृष्ण लीला के स्थान से बना चुके थे। और कभी कभी इतने राज कार्य में व्यस्त रहने पर, लेकिन मन में तो, अंतर में तो लालसा रहता है कि कहां आ गए अपने। कभी कभी अंदर में जो विद्रोह जागरूक होता था, तो बहुत बेचैन उठते थे, हृदय फट जा रहा था भगवत शरण लेने के लिए। कैसे माया से, बंधन से छूटे, कैसे राजा के पास से छूटे? भगवान भी तो शास्त्र में स्वयं कहे हैं कि माया से पास से छूटना कोई मनुष्य के बस का बात तो है ही नहीं। क्या श्लोक है वो? दैवी है सी गुण माया मम माया दुरत्तया मामे वही प्रपद्यंते माया में तांगतरंतिते। जब तक उनके शरण में ना जाए तो किसी का बस की बात है कि अपने आप छूट जाए? तो इसलिए उन्होंने खोज तो निकाल ली थी, किंतु पढ़ाई किए थे नवदीप आदि में आकर के, तो पता तो लगा लिए थे, लगभग समसामयिक थे गौरांग महाप्रभु का, पता चल जाएगा तो महापुरुष का अवदान ही हुआ है, अभी वो संन्यास लेकर के इस क्षेत्र में रहते हैं। तो पत्र विनिमय के द्वारा संपर्क रखने लगे, पत्र भेजा करते थे। तभी जमाने में तो इसे पोस्ट ऑफिस नहीं था, टेलीग्राफ ऐसे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं, कोई एक मनुष्य की कोई आदमी के हाथ में पत्र लिखित और भोज पत्र आदमी लिख करके भेजना पड़ता था, वो महीना लगेगा पैदल में जाएगा फिर वो भोज पत्र लिख कर महीना लगेगा आएगा, ऐसे ही समय लगता था। तो कई पत्रों की लिखने के बाद में एक बार महाप्रभु ने उत्तर में एक पत्र लिखे जिसमें उन्होंने ये श्लोक का लाभ सुने थे, उसमें यही आदेश दिए कि प्रतीक्षा करो, अब समय नहीं रहा, प्रतीक्षा करो, धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करो, मन में बिल्कुल विकलता बनाए रखो लेकिन प्रतीक्षा करो, जैसे रहो स्टे ऑर्डर लगा दिए, जैसे रहो ऐसे रहो स्थिति। तो यद्यपि मन में बहुत विकलता बेचैनी होता था लेकिन महाप्रभु के प्रतीक्षा आदेश में पड़े रहते थे। एक दिन की घटना किंवदंती से इसे सुनाया जाता है। और जो उनके आवास है वो गौर नगर कुछ ही दूरी पर है, एक दो किलोमीटर की दूरी, जहां महामंत्री का आवास था और जहां राजभवन था। एक दिन किसी विशेष कार्य से नवाब हुसैन शाह ने विशेष बुलावा भेजा आधी रात को राजस्व मंत्री के लिए, कुछ विशेष कार्य है। तो उस दिन सावन के महीना था, घनघोर बारिश, अंधकार रात्रि, साय साय करके पवन बह रहा है, बिजली चमक रहा है, और ऐसी अंधेरी रात में जब बिजली और पवन चलता रहा है और पूरा पानी भर भर करके रास्ता घाट भर चुका है, इसमें कौन बाहर निकले? लेकिन राज कार्य कर तलब, तो चांदी के पालकी जरीदार पोशाक पहने हुए चार चार आठ कहार आके प्रस्तुत मंत्री आवास के द्वार पर मध्य रात्र में, संतोष देव उसमें अंदर बैठते हैं, बिल्कुल मखमली मसनद मुलायम, और जो पालकी है उसके अंदर इतनी व्यवस्था है क्योंकि वो तो इतने थाट बाट थे, उनको बैठे और कहार ने उन पालकी ढोकर ले जा रहे हैं। तब भी बारिश और हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, घोर अंधकार है। इस सावन की रात्रि अंधकार की बारिश के समय जो जल जंतु का जो रब वही से चल रहा है, और सन्नाटा कभी कभी छाया हुआ है, कभी कभी बिजली और कभी कभी हवा के आवाज सुनाई पड़ रहा है। तो रास्ता में जाते जाते देखे कि हवा के झोंक से एक पेड़ गिर के पड़ा था रास्ता में, जाने के लिए रास्ता नहीं, पानी भरा हुआ है रास्ता में। थोड़ा मोड़ करके गांव के गली के अंदर निकले और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधकार से वही चल रहे हैं। कभी कभी बिजली जब लाइटेड होता है तो देखते हैं कि कुछ राज सिपाही वो कहार पालकी ढोकर चल रहे हैं, उसके अंदर में उन बैठ रहे हैं संतोष देव मंत्री साहब। तो एक धोबी के घर के पीछे होकर के वो गली से निकल रहे थे आधी रात में, और पानी के ऊपर छप छप करते हुए सात आठ लोग पैर दबाते हुए पालकी ढोकर जब जा रहे थे, उनको सुन करके धोबी ने धोबी को बोला कि ऐसे बारिश अंधेरी रात में इस सन्नाटा छाया हुआ है, इसमें कौन जा रहा है ये छप छप करके आवाज करके, रास्ता में कौन जा रहा है आधी रात को? नींद में आधे सोते हुए धोबी ने बोलता है, अरे कौन जाएगा ऐसे अंधेरी रात में, बारिश होता है, हो सके तो कुत्ता हो, नहीं तो चोर हो, नहीं तो कोई राजा के गुलाम हो, इन तीनों के अलावा तो और कोई नहीं होगा। क्या बोले? चाहे कुत्ता हो सकता है, नहीं तो कोई चोर हो सकता है, नहीं तो कोई राजा के गुलाम हो सकता है। सीधा सीधा आवाज उनके कर्ण में प्रवेश किया, राजस्व मंत्री संतोष देव का गूंजने लगा आवाज, क्या ऐसी अंधेरी रात में, ऐसी स्थिति में तो बोले तीन ही लोग जाते हैं बारिश पानी के अंदर, कुत्ता चोर नहीं तो कोई राजा के गुलाम, क्या तीनों समान है? किसी समान है क्या? मैं उन्हीं में से कोई हूं? और रास्ते भर पहुंचते तक वही इसी के ऊपर विचार विमर्श करने लगे। बोले हां सही है, मैं कुत्ता ही तो हूं, स्वान वृत्ति तो है, मालिक के आदेश पर कोई समय ही नहीं। मालिक जैसे कुत्ता मालिक के सामने पूछ हिलाते हिलाते जब जैसे बोलता है ऐसे करता है, तो मैं तो ऐसे ही हूं, ना कोई दिन ना रात, उनके आदेश पर। ये तो कुत्ता की स्वभाव है, कुत्ते की वृत्ति थी। हाँ स्वान सही में, लेकिन हाँ स्वान वृत्ति तो है, लेकिन चोर कैसे? राजा का गुलाम तो मैं हूं, वो तो सीधा सीधा प्रमाण है, लेकिन चोर मुझे क्यों कहा? मैं तो चोरी तो नहीं कर रहा हूं। चोर भी रात में जाते हैं, चोर कैसे? बोले हाँ चोर भी तो हो सकता है, क्यों? चोर की केवल परिभाषा यह नहीं है कि किसी घर में जाकर के धन लूट ले, चोर उसको भी कहा जाता है। जब कभी आपको कोई, जैसे कभी कंट्रैक्टर है, गवर्नमेंट से उसको धन सैंक्शन होता, पैसा सैंक्शन होता कि आप ये सड़क बनाओ अच्छी तरीका से, और ये पैसा ला करके सड़क न बना करके उसके पैसा को आत्मसात कर ले, तो आप उसको, समाज उसको क्या कहेंगे? चोरी तो कहेंगे। जिस संपत्ति जिसके लिए उपयोग होना चाहिए, जिस कार्य में लगना चाहिए, उसको आप उसमें न लगा करके आपने इंद्रिय तृप्त में लगाए, तो चोरी तो है, वो कोई रात के चोर या दिन के चोर। तो बोले हाँ सही तो है, जिस प्रभु ने कृपा करके मनुष्य तनु मुझे दिए थे, ये क्या इसी कार्य के लिए दिए थे? ये तो उनके सेवा के लिए दिए थे, प्रभु ने उनकी सेवा के लिए इस सामर्थ्य इस शरीर दिए थे, और उसको मैं मेरे तृप्ति के लिए राज कार्य में इतने थाट वाट राजशाही मेंटेन कर रहा हूं, मैं चोर नहीं तो कौन हूं? सत्य बात है, मैं स्वान भी हूं, चोर भी हूं, राजा के गुलाम तो हूं ही हूं। बहुत बाधा लगा अंतर में, और नहीं हो सकता। तब जाकर के प्रातः समय तक राज का समा राजा का समस्या तो निपटाए, लेकिन आते आते मन में वही विचार गूंज रहा था। घर पहुंच करके कपड़ा उतार कर सीधा अग्रज के पास गए, बोले भ्राताश्री और मेरे से नहीं होगा, आप प्रभु की प्रतीक्षा के लिए अपेक्षा कीजिए, मेरे से तो नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, मैं मन में संकल्प ले चुका हूं, मैं तभी इस्तीफा दे दूंगा आज। सनातन ने, साकर मलिक ने दबीर खास की, अनुज की इस प्रकार की बात सुनकर के चकित हुए, बोले कि आपके संकल्प तो बड़ा शुभ है, लेकिन छोड़कर मुझे भी तो जाना है, मैं भी क्या यहीं पड़ा रहूंगा क्या? ओ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अग्रज होने के नाते मुझे पहला अधिकार होना चाहिए, मैं पहले इस काम के लिए जाऊं, और बाकी जो बचे कुछ आप देखभाल करके बाद में आप आ जाना, तो इसलिए अगर आप मन बना ही लिया तो मुझे ही जाने दो, आप संभाल लीजिए बाद में आ जाना। लेकिन दबीर खास बोले भैया आप तो मेरे अग्रज है, देवतुल्य है, आपके आदेश को तो मैं कभी अमान्य कर ही नहीं सकता हूं, लेकिन बात ऐसा है कि संपूर्ण राज्य का सर्वाधिक उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर ही है, राजा का संपूर्ण भार तो आपके ऊपर है, आपको बिना पूछे कुछ भी काम करता ही नहीं, आपको ना होते आप अगर इस्तीफा दे देते तो हमारा जो घर छोड़ने का तो सारे पानी फिर जाएगा, सारे कुछ काम बन नहीं पाएगा, राजा तो प्रतिशोध के उग्र हो जाएगा वो तो इसलिए कृपा करके आप रहिए, सिमट बड़े बुद्धिमान आप हिसाब से, मैं पहले जाने दो इस्तीफा लेकर के, उनका इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समय सुविधा देख करके आ जाना। तो सनातन साकर मलिक को राजी होना ही पड़ा। तो अनुपम ने उसी दिन ही इस्तीफा पत्र लिख करके अपने समग्र संपत्ति को दो नौका में भर करके चल दिए। साथ में वो भी राजकार्य में थे, उनके छोटे भाई अनुपम वल्लभ तो उनका नाम था तभी, वो भी चल पड़े थे। उसके पहले एक घटना और हुआ था जो कल अब नाटक में देखे थे, क्योंकि बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद एक बार महाप्रभु ने स्वयं वृंदावन जाने का छलना करके रामकली पधारे। यद्यपि वृंदावन जाने का रास्ता तो ये नहीं था, लेकिन महाप्रभु रामकली पधारे थे और गुप्त वेश में रात्रि में दोनों भाई जाकर के, दोनों तीनों भाई जाकर उनको साक्षात किए थे। वहीं पर महाप्रभु ने उनको धन्यता को देख करके खूब आलिंगन क्रिय कृपा आशीर्वाद दिए और बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोले थे, नौमी भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सपच प्रिय। चाहे आप मुसलमान हो, नीच हो, कुछ भी हो, लेकिन जो मेरा भक्त है वही मेरा प्रिय है। कोई चतुर्वेद पाठ ही मेरा भक्त, अगर मेरा भक्त नहीं मेरा प्रिय नहीं होता है। इस प्रकार कहकर महाप्रभु उनको आलिंगन किए थे, कृपा आशीर्वाद दिए थे और अपने प्रेम के निदर्शन रूप से उनके नाम परिवर्तन करके आ गए थे, मतलब नामांतरण दीक्षा कार्य वहीं कर दिए थे रातारात। साकर मलिक को सनातन और दबीर खास को रूप, वल्लभ को अनुपम, इस नाम से नामित कर दिए। उसी दिन से वैष्णव जगत में वो दोनों भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त कृपा नाम। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी ने पहले अपने घर वापस आकर के अपने संपत्ति को उचित रूप से विभाजन किए, आधा तो ब्राह्मण वैष्णव में दिए, एक चौथाई घर के लिए रखे और एक चौथाई कुछ भविष्यत के लिए विशेष के लिए रखे और कुछ 10,000 मुद्रा सनातन गोस्वामी के, उनको पता था सब बड़े त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं, उनके लिए भी डिपॉजिट करके आ गए और आकर के एक पत्र फिर भेजे कि महाप्रभु का वृंदावन जाने का कब सूचना। अब जब वो गुप्तचर आया कि महाप्रभु जा चुके हैं झाड़ीखंड होकर के वृंदावन जा चुके हैं, तो तुरंत अनुपम के 7 रूप गोस्वामी निकल पड़ते हैं और एक पत्र लिख दिए। जब निकल पड़े तो उनको पता चला कि नवाब ने बड़े भाई सनातन को अरेस्ट कर चुका है और बंदी हैं, बंदी गृह में हैं। तो उनको दुख तो हुआ, तो इसलिए उन्होंने पत्र लिख करके उनको सूचना दिए कि मैं आपके लिए कुछ धनराशि रख आया हूं, उसको उपयोग करके, अपने बुद्धि के उपयोग करके किसी प्रकार से आ जाइए, हम तो वृंदावन के लिए चल पड़े। तो वृंदावन के रास्ता में चलते चलते जब प्रयाग पहुंचते हैं तो प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान किए। स्नान करके उठ के देखते हैं कि बिना बारिश बिना पानी में बहुत बड़े बाढ़, ये कैसा है, हैं? नदी में पानी नहीं लेकिन इतनी बड़े बाढ़ आ चुका है। बाढ़ किसका, पानी का नहीं, प्रेम का बाढ़ था। हजारों सैकड़ों संख्या में लोग नृत्य पागल करके, कृष्ण कृष्ण करके नृत्य कर रहे हैं। अंदाजा लगा लिए कि निश्चित जहां भी धुआं देखेंगे तो पता क्या चल जाएगा, आग तो होगा ही। जब यही से पागलपन लोग कृष्ण कृष्ण नाच रहे हैं तो शक्ति तो ही कहीं है, कोई महाशक्ति है पास में, कोई और देर ना लगी समझने में, पता लगा लिए कि बिंदु माधव मंदिर में वो महाशक्ति धर वहीं अभी ठहरे हुए हैं। तो गए, अब हजारों लोगों के बीच में और उन्मत्त होकर के, उर्ध्वभाव होकर के कृष्ण कृष्ण करके महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। उनके जब अनुपम रूप माधुरी उनके कीर्तन उनके नर्तन देखने योग्य है। उसको देख करके दूर से ही भावरस के समुद्र से वो विभोर हो गए, लेकिन पास तो जा नहीं सकते थे, बहुत जन समुदाय की भीड़ थी। अपेक्षा किए, जब भीड़ खत्म हो गया तो एक दक्षिण प्रदेश के ब्राह्मण के घर में महाप्रभु के भिक्षा के व्यवस्था था, भोजन का व्यवस्था था। समय सुजोग देखकर दोनों भाई वहीं पहुंच गए, महाप्रभु बैठे थे, मुख में घास का गुच्छा लेकर के दोनों भाई दूर से दंडवत प्रणाम किए, नीच की तरह, अति दोषी की तरह, पापी की तरह। महाप्रभु उनकी धन्यता को देख करके सहन नहीं कर पाए, उठ के आके उन्होंने आलिंगन किए, बोले कृष्ण की कैसी अपार कृपा है, आप दोनों भाई को ऐसे विषय अंधकूप से उद्धार कर लिया। रूप गोस्वामी बोले हम कृष्ण की कृपा को तो नहीं जानते हैं, लेकिन साक्षात आपकी कृपा को तो देख ही रहे हैं। वहीं पे वही प्रसिद्ध श्लोक के द्वारा उनको प्रणाम किए, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। इसी समय में वही इलाहाबाद के जमुना के उस पर अड़ाइल ग्राम में प्रसिद्ध आचार्य वल्लभ विष्णु स्वामी संप्रदाय के, उन्होंने जब सुने कि महाप्रभु आए हैं तो भी आए उनको निमंत्रण करने के लिए अपने आवास में, आकर के प्रणाम आदि किए, महाप्रभु उनको प्रणाम किए, दोनों आलिंगन किए और दोनों कृष्ण कथा में प्रेम में विभोर हो गए। महाप्रभु के जो प्रेम, वो वल्लभाचार्य की देख करके थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन कैसे रहे, दधकती हुई आग को कोई साधा कपड़ा कोई पेपर में ढांक कर कोई रख सकता है क्या? महाप्रभु की अंदर जो प्रेम के उद्गार, उसको कितने भी ढांकते हुए वो ढांका नहीं जाता था। वल्लभाचार्य साक्षात देख करके तो बोली बाप रे बाप, तो साक्षात कृष्ण होंगे, नहीं तो कोई मनुष्य में ऐसे प्रेम ऐसे विकार। तो इस प्रकार आलाप करते हुए वल्लभाचार्य ने अपने आप कृतकृत्य मानते हुए उनको सादर निमंत्रण किए कि हमारा आश्रम में पधारे, आज की भिक्षा हमारे घर में। तो महाप्रभु ने उनके आमंत्रण स्वीकार किए, उनके साथ बोले मेरे दो भृत्य हैं, वो दूर में बैठे हुए हैं, वो दोषी की तरह दूर से नीच की तरह बैठे हुए थे और जैसे दिखा है उनको, तो तुरंत दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किए आचार्य वल्लभ को। वल्लभाचार्य ने उन दोनों को देख करके, उन दोनों का दिव्य कांति, उनके भाव, उनके विनम्रता को देख करके तुरंत उनको दौड़ पड़े उनको आलिंगन करने के लिए, लेकिन दोनों भाई पीछे खिसकते रहे, नहीं 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 श्रीपाद, हम अस्पृश्य है, हम आपके द्वारा स्पर्श योग्य नहीं है, कृपा करके रुकिए रुकिए हमारे पास मत आइए। वो आगे बढ़ते हो पीछे हटते हैं। महाप्रभु इस धन्य को देख करके, रूप और अनुपम के धन्य को देख करके अंदर में खूब प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, होकर के मुस्कुराते हुए वल्लभाचार्य को बोले श्रीपाद आप मत जाइए, उनको मत छुइए, वो आपके लिए छूने के लायक नहीं है, छूने के योग्य नहीं है, वो अति दीनहीन नीच हैं, आप जैसे कुलीन प्रवीण जागिक ब्राह्मण आपके लायक छूने के लायक नहीं है। वल्लभाचार्य महाप्रभु की ओर मोड़ के देखे, उनकी ओर देखे, फिर बोले क्या प्रभु आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे नीचहीन हो सकते हैं, मैं देख रहा हूं उनके मुंह से निरंतर कृष्ण नाम निकल रहा है, आप बोलते हैं हीन है, शास्त्र में तो ये कहा गया है, जज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम सपचेतो गरियान, अगर चंडाल भी हो, अगर उसके जिह्वा में कृष्ण नाम आता हो तो सब कर्म कर चुका है, सबसे बड़े अग्रगण्य वही है, सबसे उत्तम वही है, आप कैसे कहते हैं वो दीनहीन हो सकते हैं। तो महाप्रभु सुन करके प्रसन्न हो गए, लेकिन आचार्य से रहा नहीं गया, वो जबरदस्ती उनको आलिंगन किए और आपने आपको कृतार्थ माने। तो फिर तीनों को लेकर के आचार्य ने गए अड़ायल ग्राम। वहां भी महाप्रभु के उचिष्ट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और रघुपति उपाध्याय के साथ सत्संग विश्रवण किए। उसके बाद वापस आए और भीड़ से अलग जाकर के दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक अकेले में स्वयं महाप्रभु रूप गोस्वामी को अपने शक्ति संचारित करते हुए उनको शिक्षा देने लगे। ब्रज रस की शिक्षा, रस तत्व, भक्ति तत्व और भागवत के सिद्धांत, ये सब सूत्र के रूप में, सूक्ष्म सूत्र रूप में उनको शिक्षा दिए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं प्रभु उनको चार्ज कराए, खुद शक्ति संचार करके उनको शिक्षा दिए। और शुरुआत करते हैं महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षा देते हुए, बोले रूप मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे वृंदावन जाकर के रस शास्त्र को प्रणन करना है, भक्ति रस तो पारापार शून्य है, उसका पार अपार नहीं है, मैं तुझे कैसे बता पाऊं, एक बिंदु मात्र का आभास तुझे करता हूं। संपूर्ण जगत में अनंत कोटि जीव है, ये अनंत कोटि जीव में भी दो भाग है, स्थावर और जंगम। जो स्थावर है उनके बात तो छोड़ दो, जो जंगम है वो भी तीन भाग में विभाग, कोई स्थलचर है, कोई जलचर, कोई आकाशचर है। जलचर और आकाशचर के बात तो छोड़ दो, स्थलचर में भी कई विभाग है, उसमें से मनुष्य तो अति स्वल्पतर है। मनुष्य जाति 84 लाख जोनि के अंदर भ्रमित होते हैं, मनुष्य जाति में भी इतने स्वल्प होने पर भी 84 लाख जोनि में चेतनावान मनुष्य भी कितने होते हैं, जिनका चेतना थोड़ा विकास हुआ है, मनुष्यत्व जिसका है, और उन पे भी आचार व्यवहार कौन करता है, वेद पाठ कौन करता है, बहुत कम। जो कोई वेद आदि अध्ययन करते हैं वो तो वेद को मुख में मानते हैं, वेद निषिद्ध पाप कर्म भी करते रहते हैं और धर्माचरण नहीं करते हैं। जो तथाकथित धर्माचरण करने वाले हैं धर्माचारी, वो तो साक्षात कर्मनिष्ठ हैं, कर्म जड़ है, उनमें भी कहां समझ है, कर्मकांड में लगे हुए हैं। उनमें से कोई कोई कम रचे पचे, कोई समझे बुझे, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो ज्ञानी बनते हैं, और ज्ञानी अपने चरम सीमा पहुंचकर मुक्ति पा जाता है, करोड़ों कोई मुक्तों में से कोई एक सिद्धि की तरफ जाता है, करोड़ों सिद्धों में से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है रूप। तो इसे है भक्ति का महिमा। उस इस भक्ति रस का मैं क्या बताऊं, वो तो अपने आप से नहीं होता है। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लता बीज। ऐसे ही बहुत कम 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 स्वल्प भाग्यवान, अति भाग्यवान जीव जो कितने जोनी में ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद में गुरु कृपा और कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा से गुरु कृपा, गुरु कृपा से कृष्ण कृपा से भक्ति के बीज प्राप्त करता है। कि इतने में भी नहीं, बीज प्राप्त करने के बाद माली होकर के उसको पोषण करना होगा, खेती करना पड़ेगा। केवल बीज से काम नहीं चलता, अच्छा नस्ल के बीज मिल जाए लेकिन खेत है जो चट्टान ऐसे फर्श पर बढ़िया से बीज बो देने से कोई उगेगा क्या? खेत भी चाहिए, खेत है अपना हृदय, हृदय में अगर क्षेत्र ठीक नहीं है, चट्टान है, कठोर है, निष्ठुर है ना अचार पड़ा हुआ है तो कितने बढ़िया से बीज डालने से होगा क्या? एक कृपा रूप बीज का भी कोई काम नहीं बनेगा। तो खेत भी आवश्यकता है, अगर अच्छा खेत भी बन गया तो बीज भी डाल दिया, बढ़िया खेत है, बढ़िया बीज है, लेकिन अगर पानी नहीं दिया तो सेचन भी करना पड़ेगा। तो सेचन भी बढ़िया कर लिया, बढ़िया माली हो, पता है कैसे क्या करना चाहिए, तो बीज से अंकुरित हुआ, बीज अंकुरित होकर के पेड़ उगने लगा। लेकिन तभी भी भय है ना, कोई भेड़ बकरी आकर घुस जाए खा जाए तब फिर खत्म। तो उसके लिए बड़ा बंदी करना पड़े, बड़ा बंदी करके उसको बढ़िया संभाली, उनको देख रेख करके गुजारा। लेकिन आजकल भेड़ बकरी थोड़ी, कभी कभी पागला हाथी भी आ जाता है, उसके लिए ये जो बड़ा बंदी तो एक मिनट में तोड़ घुस घुस जाएगा, और हाथी घुस गया तो एक बार उसका पैर के नीचे वो नाजुक पौधा आ जाए तो गया, फिर तो बीज सही से चटनी बना देगा और होगा आगे संभाली नहीं उठता। हाँ, तो ये अपराध ऐसा ही है पागल हाथी की तरह। तो इसे सांकेतिक शिक्षा बहुत दिए भक्ति रस की, और 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दे करके उनको बोले कि अभी मुझे जाने दो। तो रूप गोस्वामी बोले, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं, आपके संग छोड़कर मुझे रहा नहीं जाता। महाप्रभु बोले, ना तुझे वृंदावन जाना होगा तो वृंदावन जाओ, थोड़े घूम फिर करके बाद में फिर आ जाना, मैं नीलाचल जाता, नीलाचल मेरे पास आना, कुछ दिन रहना, अभी तो वृंदावन जाओ, इतने रास्ता आ गया, थोड़ा दर्शन कर लो। कहते ही वो नौका में चढ़ करके गंगा पार करके महाप्रभु काशी की ओर चले गए। रूप गोस्वामी मूर्छित हो गिर पड़े, लेकिन करे क्या, आदेश तो पालन करना ही था, वृंदावन की ओर बढ़े। चलते चलते कुछ दिन के बाद वृंदावन प्रदेश पर पहुंचे। सौभाग्य से सुविधि राव से भेंट हुआ, तो उनके देखरेख में रहे, लेकिन ज्यादा देर रहे नहीं, मन में बड़ा चिंता था अग्रजों का। सनातन गोस्वामी को बड़ा चिंता पड़ा था, कैद खाने में थे, क्या हुआ, निकले कि नहीं, क्या हुआ, बड़ा चिंता था। इसलिए एक माह के अंदर यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी तभी वृंदावन में थे, लेकिन दोनों का भेंट नहीं हो पाया। लगभग एक महीना के बाद रूप और अनुपम दोनों फिर निकल पड़े। महाप्रभु का दर्शन की आकुलता था और भाई के संवाद भी लेना था, इसलिए निकल पड़े। जब गंगा पार प्रयाग पार करके काशी पहुंचे तब पता चला कि भाई साहब आ करके यहां, मैं भूल गया बात, जब उन्होंने पहली बार भेंट किए प्रयाग में महाप्रभु से, तो महाप्रभु उनको कुशल वार्ता पूछे, तो उन्होंने बोले, प्रभु क्या कुशल बताऊं, भयाश्री की तो नवाब ने अरेस्ट कर लिया, कैद खाना में रखा है, पता नहीं क्या कर क्या होगा, आपकी कृपा हो तो उनका उद्धार हो। तो महाप्रभु हंसते हंसते, कोई रूप क्यों चिंता कर रहे हो, उनका उद्धार हो चुका है, वो तो अभी मुझे मिलने वाला है, महाप्रभु पहले से बता दिए थे उनको, हुआ था तो ही, प्रभु वाक्य तो छूट हो ही नहीं सकता है। तो जो महीना के बाद वापस गए बनारस में, तो उनको पता चला कि 2 महीने तक महाप्रभु के साथ भ्राताश्री थे और अभी वृंदावन की ओर चल पड़े, और लेकिन उन्होंने दूसरे रास्ता पकड़े, दूसरे रास्ता पकड़े, दोनों का भेंट नहीं हुआ। वो बनारस से वृंदावन की ओर चले, वो वृंदावन से बनारस की ओर चले, लेकिन दैव की विधान ऐसे है कि दोनों भाई का दर्शन नहीं हुआ, ये रास्ता में जाते वो रास्ता में भेंट नहीं हुआ। और क्या करें, अब अधड़ भूमि में फंसे कि अब वृंदावन जाओ भाई की देखने के लिए, या पूरी जाओ महाप्रभु देखने के लिए, अब क्या करूं। चलो महाप्रभु के पास चलते हैं, इतने दूर आ गए। तो अनुपम ने बोले, नहीं देखो भाई अभी आ गए, घर के ठीक ठाक अभी नहीं हुआ है, उनका देखभाल भी करना था। तो अनुपम में कहने के हिसाब से बंगाल गए, जाकर परिवार के जो थोड़े बचे कुचे जो दायित्व था उसको पूरा निभाए, और चलते समय अनुपम का गंगा प्राप्ति हुआ, अकेले गए नीलाचल। आपने आपको तो अति नीच मान ही रहे थे, मुसलमान सभी, तो इसलिए पूरी पहुंचकर सोच रहे थे मैं क्या करूं, श्री जगन्नाथ मंदिर में तो ऐसे अभी भी अद्यावधि नियम है कि विजातियों को दर्शन वर्जित है, और मैं तो विजातीय हूं, उससे भी अति नीच हूं, मैं कैसे जाऊं? श्री क्षेत्र का बड़दंड भी मेरे लिए अस्पृश्य है। लेकिन मन में एक आशा था कि ठाकुर हरिदास भी तो वहीं रहते हैं ना, कहीं उनके शरण में जाऊं, उनके साथ रहूं। तो पूछताछ करके पुरी में हरिदास ठाकुर पर कुटिया में उतरे। हरिदास ठाकुर देख करके तो पहले तो जानते थे, प्रेम आलिंगन में लिए, खूब रोए और बोले, रूप आपके लिए तो मैं राह ही देख रहा था, हम सबको पता था, उत्कलवासी सारे वैष्णव को पता था कि आप आने वाले ही हैं। ना कैसे ना, अरे प्रतिदिन तो महाप्रभु आपके गुण गारिमा वर्णन कर रहे हैं पंचमुख होकर के, बता रहे थे शीघ्र आने वाला ही है, हम सबको पता था कि आप आएंगे जरूर, अब तो आ ही गए, सबसे पहले मुझे मिले ना, मेरा तो कोई शरण नहीं है, मैं तो मंदिर दर्शन करने यहीं से चक्र दर्शन करके वहीं से दर्शन जगन्नाथ जी के दर्शन चक्र के द्वारा करेंगे, चक्र दर्शन पति तपावन बाना और नीला चक्र के दर्शन से जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो दोनों हीन भक्त वहीं रहे। दूसरे दिन महाप्रभु अपने नित्य क्रम के अनुसार उपलभोग के बाद अपने भक्त को दर्शन देने के लिए सिद्ध बकुल पहुंचते हैं। तो हरिदास ठाकुर के साथ आज एक दूसरे भक्त थे, दोनों प्रणाम किए, महाप्रभु समझ गए, रूप गोस्वामी तुरंत आकर प्रेम आलिंगन में लिए, कुशल वार्ता पूछे, सब बताए। उन्होंने बताया कि इससे मेरे अनुज का गंगा प्राप्ति हो गया सनातन, और सब ठीक ठाक है, बातचीत करके रहे। तो रूप गोस्वामी लगभग 10 महीने तक पुरी में रहे। जब वो पुरी जा रहे थे वृंदावन से, एक्चुअली रूप गोस्वामी के चरित्र एक अद्भुत चरित्र था, ऐसे इतने पारदर्शी व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व में कवित्व, भक्ति और पांडित्य तीनों की समन्वय था। उन्होंने जब नवाब हुसैन शाह के वहां राजकार्य में नियुक्त थे, महाप्रभु के दर्शन ही नहीं हुआ था, तभी उन्होंने नाटक रचना कर रहे थे, दो मुख्य नाटक हंसदूत और उद्धव संदेश, वो पहले से उनका रचना है महाप्रभु से भेंट होने के पहले। इससे पता चलता है कि कितने बड़े पहुंचे हुए कृष्ण प्रेमी है। आप अगर हंसदूत और उद्धव संदेश पढ़े हो तो उसमें राधा रानी के विरह, कृष्ण के विरह की वेदना उद्धव संदेश में, राधा के विरह की वेदना हंसदूत में जो विशेष वर्णन है, जो पढ़े वही जाने। वो महाप्रभु से भेंट होने से पहले ही रच चुके थे उसको, और नाटकीय कवित्व तो उनके अंदर था ही। जब वृंदावन में एक महीना घूमे तभी उन्होंने वृंदावन के कृष्ण लीला के ऊपर नाटक रचना शुरू ही कर दिए थे, लगभग नंदीमुखी श्लोक आदि का रचना कर डाले थे। रास्ता में जाई जाई समान में था, उनसे लेखन ही चलता था। अकेले चलते समय जब उन्होंने ओडिशा के अंदर जा रहे थे, पुरी से कुछ दूरी पहले भुवनेश्वर के आसपास, लिंगराज मंदिर के आसपास एक ग्राम है सत्यभामापुर, उनको पता नहीं था, वहां रात्रि में उन्होंने गांव से अलग एक पेड़ के नीचे कोई जमीन में जाकर के विश्राम किए। अकिंचन साधु है, कहीं ऐसे रुक नहीं रहते, कोई अच्छा साधन में रुकूं, हम जिसको जाते हैं कोई धर्मशाला मिल जाए, कोई ऐसा नहीं धर्मशाला, कोई अच्छा धर्मशाला, कोई अच्छा गेस्ट हाउस जिसमें बढ़िया सा कमरा हो, नीट एंड क्लीन, अटैच बाथरूम हो, फिर और भी सफाई हो, वो ऐसा कुछ नहीं। घर तो नहीं देख रहे थे, पेड़ देख रहे थे, पर गांव से बाहर कोई खेती फेती बाहर में कोई पेड़ पौधा हो उसके नीचे सो जाते थे, उनका ऐसे चयन और हमारा चयन। तो जहां सो गए थे पेड़ के नीचे, अर्धरात्र को स्वप्नों में देखे कि स्वयं सत्यभामा आकर के उनके सामने खड़े हैं, आदेश दे रहे हैं कि रूप ऐसा मत किया करो, न क्या न वृंदावन को कृष्ण से बाहर मत करो, वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, जो जद कुमार कृष्ण है और नंद कुमार कृष्ण वो दोनों अलग है, वो मथुरा वृंदावन वो जद कुमार का है और नंद कुमार को अलग है, वो वृंदावन छोड़कर नहीं जाता, इसलिए वो दोनों लीला अलग करो, मेरे लीला को अलग रचो, मेरी कृपा से ही बहुत विलक्षण होगा। तो रघु स्वामी समझे मैं ये नाटक ब्रज लीला द्वारका लीला एक साथ में लिखना चाह रहा था, लेकिन सत्य महामा जी मना कर रहे हैं कि उनके लीला को अलग करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मन में विचार लिए, जब पुरी पहुंचे तो भेंट हुआ महाप्रभु से। एक दिन ऐसे कथा प्रसंग में महाप्रभु आकर रूप गोस्वामी को बोले, बोलते हुए वही बात कहे, रूप देखो आप जानते हैं, ये श्लोक पढ़कर के उन्होंने बताया कि जो नंदसुत और जदसुत वो दोनों अलग अलग है, यही बात भी कहे। तो इसलिए उनको पता भी चल गया कि महाप्रभु ही उनके योजना है नाटक को अलग अलग करने के लिए। तो रूप गोस्वामी वही रहे, एक तो केवल 10 दिन तक रस शास्त्र की सूत्र शिक्षा हुआ था, लेकिन अभी साहचर्य तो प्राप्त नहीं हुआ था। महाप्रभु जब किसको देते हैं, प्रभु जिसको देते हैं तो ऐसे नहीं देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, अब ले भी नहीं सकते हैं। तो उनको तो बुला लिए थे नीलाचल, बुलाने का आशय कुछ और भी था, क्योंकि केवल सीखने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा ना। यहां कोई रस के अधिकारी नहीं थे, नीलाचल में महाप्रभु स्वयं रसिक राज तो है ही, उनके साथ ओके इसे दो और भक्त हैं जो साक्षात रस शास्त्र के रस सिद्धांत के मूर्तिमंत साधक है, वह स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, उन दोनों के साहचर्य भी प्राप्त हुआ। तो लंबे समय तक महाप्रभु के संग, उनके रसिक भक्तों के संग, ओ रस के बिल्कुल पुष्टि होने लगा। तो एक बार जब महाप्रभु गुंडीचा महार्जन के समय में, उस समय हरिदास ठाकुर के साथ हमेशा महाप्रभु के जो नृत्य कीर्तन और लीला के दर्शन दूर से कर रहे थे, पास में नहीं जाते थे, रथ यात्रा के समय जो महाप्रभु के रथाग्र नृत्य उदंडक नृत्य आदि सब देख करके विफल होते थे, महाप्रभु जब भाव विभोर में रथ के सामने नृत्य करते थे तो एक श्लोक गाया करते थे जो कोई नहीं उसका अर्थ समझ रहे थे, केवल स्वरूप दामोदर ही उसका समझ रहे थे। तो उसको सुन करके रूप गोस्वामी आए, दूसरे दिन आकर के अपने जो कुटिया में रहते थे ताल पत्र में उसके अनुसार एक श्लोक लिखे और अपने कुटिया के छप्पर पर उसको ठोस करके स्नान करके चले गए थे। अंदर जाई महाप्रभु स्वरूप दामोदर को साथ में लिए पहुंच गए उनके कुटिया पर, देखे रूप कुटिया में नहीं है, और तो अंतर्जा में है सर्वज्ञ है, नजर पड़ गया ऊपर में तालपत्र है, खींच लाए और पढ़ लिए, पढ़ के भाव में आविष्ट हो गए, ये क्या है, ये कैसे मेरा मन को जान गया। इतने में ही स्नान करके रूप गोस्वामी आ रहे थे, प्यार से के चाटा मारे उनको, बोले रूप ये मेरे हृदय की मन की बात तू कैसे जान लिया, उसको कैसे लिख लिया। रूप गोस्वामी कुछ नहीं कहे, स्वरूप को पूछे स्वरूप दामोदर ये कैसे मेरा मन की बात जान गया। स्वरूप दामोदर जी बोले कैसे जान गया, यही तो प्रमाण है कि आपके कृपा के पात्र है, आपके कृपा के बिना आपके हृदय के अनुवाद और कौन कर सकता है, इससे निश्चित सिद्ध होता है कि अवश्य ही आप पहले उनके ऊपर कृपा कर चुके हैं, नहीं तो कैसे वो पता जान गया इस बात को। तब महाप्रभु स्वयं अपने मुख से बोले हाँ हाँ, प्रयाग में मुझे भेंट हुआ था, योग्य पात्र जान करके मैं इसको अनुग्रह किया, अपने शक्ति संचार किया, रस शास्त्र की शिक्षा दिया। स्वयं महाप्रभु अपने आप से बोले और फिर अपने पूरे अद्विताचार्य नित्यानंद प्रभु सार्वभौम आदि सब बड़े बड़े श्रेष्ठ भक्तों को ला करके उनसे आशीर्वाद दिलाए। एक बार तो हठात ऐसे आ गए, रूप गोस्वामी आपने पता आदमी को नाटक फाटक लिखते थे बैठ कर, बोले रूप क्या कर रहा, क्या लिख रहा है, आकर एक पता खींच लिए उनसे, खींच कर देखने लगे, देख करके उनके अक्षर की बड़े प्रशंसा करने लगे, बोले मुक्ता जैसी तरह अक्षर है, कितना सुंदर अक्षर है। तो अक्षर उसकी प्रशंसा करते करते एक श्लोक लिखा था उसको पढ़ लिए, हरिदास जी बैठे थे पास में नामाचार्य, वो श्लोक को पढ़कर तो महाप्रभु को भाव स्मरण नहीं कर पाए, उनका क्या होगा, हरिदास ठाकुर उदंड नृत्य करने लगे, बोले बहुत सुना ही नाम का महिमा, बहुत सुना हूं, बहुत बड़े आचार्य मंग से नाम की भारी भारी महिमा सुना हूं, लेकिन ऐसा ऐसा अद्भुत नाम का भी कोई महिमा हो ही सकता है, कोई रचना कर ही सकता है क्या। वो प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते होंगे, क्या है श्लोक, तुंडे तांड विनिंग रतिंग वितनुते तुन्नावली लब्ध हे कर्णे क्रोड कडम्बिने कर्णा अर्बुदेभ्य स्पृहाम चित्त प्रांगण संगिनी विजयते विजयते इंद्रिया इंद्रिय के वृत्ति से विजय कर लेता है, कीजान जनित कियद्भुत कृष्ण अक्षर मैंने कृष्णा ये दो अक्षर में कैसा अद्भुत रस है मैं क्या बताऊं, ये ऐसे ऐसे कर देता है मुझे ऐसे नाम का महिमा। तो उसको सुन करके एक बार बोले नहीं अभी रसिकों के साथ उनको भेंट कराना होगा। एक बार सार्वभौम रामानंद राय और स्वरूप दामोदर तीनों को लेकर के महाप्रभु आ गए आपके बैठ गए मंच के ऊपर, हरिदास और रूप गोस्वामी बैठे हैं। तो महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करने लगे, बोले आप जानते हैं आप तो क्योंकि प्रसिद्ध रसज्ञ हैं नाट्यकार हैं दोनों स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय। तो उन्होंने बोले हमारा रूप भी कुछ नाटक लिख रहा है इसे नाचा वो भी लिख रहा है कैसा रूप कुछ नाटक बताओ। तो उन्होंने वही श्लोक पढ़ के सुनाया उनको। पहले महाप्रभु आदेश दिए रूप पाठ करो, लेकिन रूप नहीं पढ़ रहे थे। अरे पढ़ो तो सही, नहीं पढ़ रहे थे, संकोच में थे, अपने इष्ट के आदेश को भी नहीं पढ़ रहे थे। बड़ों के सामने मेरा बड़ाई होगा मैं कैसे बोलूं। तो सर्वनंद बोले वो शर्म कर रहा है लो मैं पढ़ लेता हूं। वो खुद लेकर पढ़ने लगे, पढ़ करके भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और बाद में जब ये श्लोक आया तुमने तांडवी ने उसको सुन करके तो उनका प्रशंसा की सीमा ही नहीं रहा। तो फिर रामानंद राय बोले अति उत्तम है, आप नाटक भी लिखते हो क्या? ना लिखा हूं कुछ नाटक, पढ़ो तो नंदीश्वर के श्लोक नंदी मुख के श्लोक सुनाए बहुत अच्छा है। तो वो तो प्रसिद्ध नाटककार थे। बोले इष्ट बंधन क्या लिखा पढ़ो। तो रूप गोस्वामी थोड़ा ऊपर देखे नीचे देखे, महाप्रभु बोले अरे संकोच शर्म किस लिए लाज किस लिए कर रहे, वैष्णव समाज में नाटक बताना चाहिए कैसे। तो उनके फिर पढ़ने लगे अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कड़ो, उसको सुनते ही महाप्रभु मोड़ कर बोले ये गड़बड़ कर दिया, ये क्या कर दिया तूने, ये तो अति स्तुति है, ये ठीक नहीं। अपनी स्तुति और उनके इष्ट तो हुई थे लेकिन महाप्रभु सिन्हा मुंह मोड़ लिया ने, बाकी सब बोले आज हम कृतार्थ हो गए, आज ही हमें कृतार्थ हो गए इसे श्लोक का सुन करके। तो इसे उनका इतने कवित्व और नाटक रचना की जो शैली था इतनी अद्भुत परिपाटी था उनका। उसके बाद में लगभग 10 महीना तक पुरी में रहने के बाद उनको महाप्रभु ने आदेश देकर भेजे कि आप जाओ यहां भक्ति शास्त्र प्रणयन करना है, लुप्त तीर्थ को उद्धार करना है, विग्रह प्रतिष्ठा आदि करना है, ये सब काम आपके द्वारा ही करना ही है, आप जाइए। तो आए, आते समय भी बोले भाई के साथ भेंट होगा। रूप गोस्वामी यहां से निकले, सनातन गोस्वामी से यहां से निकले वृंदावन से, वो पुरी से चल दिए वृंदावन की ओर, वृंदावन से चले पुरी की ओर, वही बात हुआ देवी के से विधान, दोनों भाई दोनों रास्ता से भेंट ही नहीं हुआ। वो आके पहुंचे तो बोले पुरी गए वही यहाँ दोनों को भेंट नहीं हुआ। जब सनातन गोस्वामी पहुंचे पुरी में, महाप्रभु बोले 10 दिन वहां गए वहां से, 8-10 दिन हुआ था निकला यहां से और भेंट नहीं हुआ। लेकिन सनातन ज्यादा दिन नहीं रहे, साल एक भर रह करके वापस आ गए वृंदावन में, दोनों का भेंट हुआ। अनेक समय तक दोनों साथ में रहे, महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए तत्पर रहे लुप्त तीर्थ का उद्धार आदि में। तो ब्रज की एक एक गली गली सब जगह ढूंढ करके शास्त्र अनुसार सब तीर्थ को स्थापना करना था। रूप गोस्वामी बड़े अधेड़ भूमि में बने थे कि शास्त्र में इसे लिखा गया है कि महाराज बजरनाम के द्वारा प्रतिष्ठित गोविंद देव वृंदावन के जोगपीठ में अद्यावधि विराजमान है, लेकिन जोगपीठ है कहां, ये वृंदावन है कहां पता नहीं लगा पा रहे थे, आपको मालूम है ना। नहीं, महाप्रभु से पहले लोग इसी को वृंदावन नहीं मानते थे, कामेवन को वृंदावन बोलते थे। हाँ, अभी भी आप कामा में जाएं लोग बोलेंगे यही तो आदि वृंदावन, ये है ये 500 साल पहले का वृंदावन, ये पहले का वृंदावन ये है, ऐसा बता रहे हैं ऐसे ही था। तो ढूंढते ढूंढते पूरे ब्रजमंडल में कहां वृंदावन है, वृंदावन में जोगपीठ कहां है, गोविंद देव मिलेंगे, जितने पुराने बूढ़े बूढ़े सब ब्रजवासियों पूछे कोई नहीं बता सके। तब बहुत चिंतित बहुत ढूंढ ढूंढ करके परेशान होकर एक दिन आकर के वृंदावन जमुना किनारे बैठ करके रोने लगे, हताश होकर के बोले भगवान को ढूंढने का शक्ति कोई मनुष्य का थोड़ी हो सकता है, कैसे कर सकता। जैसे सूर्य को प्रकाश करने का शक्ति केवल सूर्य का ही है, कोई दूसरा प्रचेष्टा से नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु के प्रकाश में कैसे कर सकता हूं। तो इसे सोच में पढ़ करके अपने आराध्य देव गोविंद का आराधना करते हा गोविंद कर करके रोते रोते मूर्छित होकर यमुना तट पर गिर पड़े। जब अहज्ञान हुआ तो तो सामने देखे एक ब्रजवासी लड़का खड़ा है। बोले बाबा काहे को रोते हैं, क्या हो गया? ना क्या बताऊं ना काहे को सोच रहा है, वही ढूंढ रहा है ना गुमाटीला। ना क्या गुमाटीला? जहां जहां ठाकुर जी है वही गुमाटीला तो है ना, कहां है ना, चलो मेरा साथ। हाँ प्रतिदिन तो दोपहर में वो गाय जाता है यहां दूध निकाल के आता है, हम तो डेली देखते हैं, चलो। जो उनको हाथ पकड़ कर ले गया, केसी तीर्थ के पीछे वही गुमाटीला था कुंज के अंदर। बोला देखो वही देखे दोपहर के समय गाय जा करके दूध झरा के आता है, और जैसे वो दर्शन किए हाथ पकड़ कर लड़का आया था, पीछे मुड़कर देखते तो लड़का ही नहीं। चुप गोस्वाम की वो समझने में देर ना लगी ब्रजवासी लड़का कौन था। आनंद अतिरेक मूर्छित हो गए। अब उठ करके और व्यवस्था करना ही था आराध्य देव को प्रकाश करने का, तो लोग को ढूंढाण कर ला करके खनन कार्य शुरू किए। थोड़ा ही खोदन करने के बाद वही अपरूप गोविंद देव विग्रह वज्रनाभ प्रतिष्ठित वो प्राप्त हुए। तो सारे चारों तरफ खबर फैल गया कि सिद्ध बाबा ने ठाकुर को प्रकट कर दिया। हाँ जो को पीठ से गोविंद जी प्रकट हो गए, गोविंद जी का प्रकाश सुन करके वो हजार संख्या के नर नारी आए दर्शन करने के लिए, और बहुत बड़े समारोह से उत्सव होने लगा। रूप गोस्वामी आनंद से रूप सनातन दोनों मिल करके पत्र लिखे, महाप्रभु के पास पत्र भेजे कि इसे इसे प्रतिष्ठा किए, रूप गोस्वामी गोविंद देव का आविष्कार किए। महाप्रभु अपने भक्त समुदाय के सुनने खबर पा करके खूब आनंदित हुए, खूब तुष्ट हुए। और जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भेजे थे, बोले तुम जाओ ब्रज में जाकर यह सब करो, लुप्त तीर्थ उद्धार करो, आविष्कार करो, और मैं अवश्य एक बार आऊंगा देखने के लिए। ये उनको बताया था कि मैं आऊंगा देखने के लिए। ऐसे लोग कहते हैं, भक्त लोग का ऐसे कहना है कि भगवान स्वयं कहते मैं आऊंगा देखने के लिए, लेकिन आए तो नहीं, एक बार ही तो आए थे, ना आए कैसे। बोलते हैं कि जब गोविंद प्रकट हो गए तो महाप्रभु सुन करके बड़े आनंदित हुए। आनंद होकर के बोले वो तो निराश छोड़कर तो आए नहीं, लेकिन उनके सेवक जो काशीश्वर पंडित थे उनको बोले कि तुम जाओ, रूप अकेला है, उनको गोविंद जी की सेवा सहायता करो, उनके साथ जाओ। लेकिन उन्होंने दुख प्रस में आपको छोड़कर कैसे जाऊं, आपके विरह सहन नहीं कर सकता। तो महाप्रभु स्वयं आपने एक विग्रह बनाए थे, उसका नाम दिए थे गौर गोविंद। उस विग्रह बना करके बोले ये विग्रह मेरे से अभिन्न है। काशीश्वर पंडित बोले मुझे कैसे पता है, तो विग्रह है वो तो आप है, मुझे क्यों ऐसे ठग रहे हैं। ना नहीं ऐसा नहीं है, भोजन में आ जाना दोपहर में। अब काशीश्वर पंडित के सामने स्वयं महाप्रभु और गौर गोविंद विग्रह दोनों बैठ करके एक साथ भोजन के एक थाली में दोनों खाए। काशीश्वर देखे बोले अरे ये तो साक्षात अभिन्न है। तब उनको बिल्कुल भरोसा हुआ, विग्रह को लेकर आए और आकर गोविंद देव का दक्षिण में उनको प्रतिष्ठा किए। महाप्रभु का कहना सही है, कई कई कहते राधा रमण के रूप में महाप्रभु आए। तो महाप्रभु आए ऐसे गोविंद देव को प्रकाश पकड़ किए। कथा बहुत लंबी है, थोड़ी थोड़ी लीला और कह देते हैं। तो कैसे राधारणी के विग्रह पुरी से आए तो बड़ी लंबी कथा है, लेकिन जो धाम में रह करके इतना दिन धाम सेवा करते हुए धामेश्वरी के दर्शन नहीं हुआ, उनकी कृपा नहीं हुआ, इसके लिए बड़े बेचैनी रहा। लुप्त तीर्थ के उद्धार में दोनों भाई लगे हुए थे। एक बार नंदग्राम और जावट के बीच में टेर कदम में रूप गोस्वामी भक्ति ग्रंथ के रचन में लगे हुए थे और तीर्थ के प्रकाश में लगे हुए थे। लेकिन मन में एक बात विचार आया, इतने दिन धाम में रहे लेकिन धामेश्वरी के ना दर्शन ना कृपा का कोई अवकाश ही नहीं हुआ। बड़े दुख होने लगा, खान पान छूट गया, मधुकरी के लिए गए भी नहीं। ऐसे ही उपवास करते अनशन करते रहे, ग्रंथ रचना रहे और दुख करते रह गए। बोले हम नीच है, हम अयोग्य है, इसलिए कृपा करके राधारणी हमको कृपा नहीं करती है। इसी विचार में कई दिन भूखे प्यास रहे। एक दिन समाचार मिला कि अग्रज आ रहे हैं, तो व्यग्र हो उठे, इतने दिन के बाद भैया श्री आ रहे हैं तो कैसे उनका सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, रोटी के टुकड़ा भी नहीं है। मधुकरी में जाऊं तब रोटी लाऊं, सूखा रोटी तो मैं क्या उसमें करूं, थोड़ा कोई अच्छा बनाऊं, कोई खीर बनाकर खिलाता तो अच्छा होता। खीर खाए तो कई जुग गया, जब राजा के यहां थे तब कोई मिष्ठान्न खाते थे, अभी मिष्ठान्न तो स्वप्न में रहा, लेकिन भैया आ रहे हैं, इतने दिन के बाद भेंट होगा, कुछ अगर मिष्टान होता तो उनको स्वागत करता, खीर खिलाता। मन में इसे लेकिन क्या करूं, मधु करके जाऊं तो रोटी के टुकड़ा के अलावा ये सब कहां मिलेगा। ये सोच करके अपने मन की बात मन में रखे, दबा दिए, वासना को दबाना ही पड़ा। लेकिन ज्यादा देर नहीं, दरवाजे में खटखट हो ले, बाबा। बाहर आकर देखे एक लाली खड़ी है। क्या बाबा ऐसा है, आप मधुकरी को तो नहीं जा रहे हो, कोई दिन हो गया। माँ ने बोला कि बाबा नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, अब जाओ ये दे आओ, खीर बना के खाएगा। तो ये सब भेंट दिया, दूध चावल और चीनी और जो सब सामग्री, सब सामग्री लेकर आ करके रेडी। तो इसे किसी ने, माँ ने बोला आप मधुकरी के नहीं जा रहे हैं बहुत दिन से, इसने भेजा है। तो उसको देख करके उनको स्वीकार करने के लिए जा रहे थे और रोने लगे, बोले देखो मैं तो सोच रहा था राधा रानी का ऐसे अशेष कृपा है, तुरंत मेरे मन जान की व्यवस्था कर दिया। जितने आनंद आ रहा था मन में, इतने दुख भी हो रहा था, क्यों भी हो रहा था, क्या इसे दूसरे के द्वारा भेजवा दिया, स्वयं नहीं आ पाया, स्वयं नहीं दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के द्वारा ऐसे काम करवा देते हैं, तो हम की इतने अनधिकारी हैं। इसे मन में क्षोभ भी हो रहा था और सुख भी मिल रहा था, ऐसे आनंद अश्रु बिता रहे थे कि हम कितने अयोग्य है और कितने योग्य भी है। तो इसको देख करके लाली बोला, बाबा रो क्यों रहे हो, अच्छा कोई शरीर में शक्ति नहीं खीर बनाने को, कोई बात नहीं खीर में बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो शरीर में तू देखने सूख गया सारे, तो फेफड़ा तर सूख चुका है, तू क्या खीर बनाओगी, खीर में बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो लाली ने जल्दी से खीर बना दी, तो चली गई खीर बना करके। वो सनातन गोस्वामी आए और उनको जब खीर दिए, फिर करके सनातन गोस्वामी खीर एक बार खीर मुंह में लिए तो तुरंत चकित होकर देखे, बोले रूप ये खीर कौन बनाया, ये सामग्री द्रव्य कौन सा है, कहां से आया। तो रूप गोस्वामी सारे वृतांत बता दिए, ऐसे ऐसे घटना हुआ, मैं तो सब मैं कहां से लाऊं, मैं तो इसे देख रहे मेरे हाल। सनातन गोस्वामी खीर के पात्र हाथ में लेते हुए अश्रु विस्फोरित तो नयन में अवाक होकर देखते रहे, सुनते गए, सुन सुनकर चकित होकर थोड़ी समय के बाद बोले रूप तो फिर भी समझ नहीं पाया, अरे वही तो थे। तो राधा रानी की कृपा के लिए चाह रहे, तो हमारे इष्ट को तू आपने सेवा में लगा दिया ला करके, तो पहचान नहीं पाया। उन्होंने स्वयं लाए और स्वयं हमारे लिए इतने परिश्रम, इतने कष्ट करके खीर बना के चले गए, तो पहचान नहीं पाया। आप रूप गोस्वामी करे क्या, आप प्रमाण का तो ज्यादा बाहर से जरूरत नहीं था। सनातन गोस्वामी जो बोले प्रकट खुद अनुभव कर रहे थे, रोते रहे कि मैं पहचान नहीं पाया। इस प्रकार राधा रानी की अशेष कृपा पात्र भी थे, और एक अनेक अनेक लीला है, लेकिन समय बीत रहा है। इसे जब आकर के गोवर्धन के किनारे राधा कुंड में रहते थे, तो एक दिन गोपाल जी के दर्शन के, जो माधवेंद्रपुरी ने प्रकट के गोपाल जी के दर्शन के इच्छा हुआ, तो कैसे दर्शन करें, वो तो गोवर्धन के ऊपर विराजे, मैं तो गोवर्धन में पैर ना धरूं। तो ऐसे ही हुआ, उनके मन जानकर गोपाल जी उनके सेवक ऐसा अफवाह फैल गया कि मुसलमानी आक्रमण आ रहा है, तो उनके जो सेवक लोग स्वयं गोपाल जी विग्रह को उठा के लाके मथुरा में विठलेश्वर के घर में रख दिए। महीने भर यहां रहे, तो पूरे स्वपार्षद जाकर के वहां दर्शन खूब किए। ऐसे ही भक्त वांछा पूर्ण करते हैं, तो समय नहीं रहा। ऐसे बजे अनेक दिन तक अनेक लीला करने के बाद लगभग 90 वर्ष के वयस में अग्र सनातन गोस्वामी चक्र तीर्थ चक्रेश्वर तीर्थ में और गोवर्धन की धारी के स्मरण में निकुंज में प्रवेश किए थे। तो सनातन गोस्वामी के अंतर्धान होने के बाद में अभिन्न तनु रूप कवि प्राणी निकल गया था। निष्प्राण शरीर से अग्रज का अंत्येष्टि क्रिया तो किए और ला करके उनको मदन मोहन के आंगन में समाधि दिए, बहुत बड़े समारोह से उत्सव किए, लेकिन उसके बाद में सदा के लिए अपने पास में कुटीर में चले गए। और भजन में निमग्न हो गए। थोड़ी दिन के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा को उनके दिन हुआ श्रावणी द्वादशी को अपने इष्ट देव की ओर देखते देखते नयन मुद्रित कर लिए। आज की तिथि था तो ऐसे ही देखते देखते ब्रजधरा पर संपूर्ण विश्व जगत के जितने भक्त हैं, जितने वैष्णव हैं, उनमें से जो उज्जवल तारका दो थे वो लुप्त हो गए। ब्रज में जो तत्कालीन बड़े बड़े संत थे उसमें जो व्यास जी थे, हरिराम व्यास, उन्होंने अपने उक्ति से स्वयं कहे हैं कि ब्रज भाषा उन्होंने लिखे हैं कि महाप्रभु का विशेष कृपा पात्र जो दो उज्जवल रसिक संत थे वो आज नहीं रहे। आज ब्रजवासियों को जब रस की प्यास होगा किसके पास जाए अपने रस की प्यास बुझाने के लिए, कहां जाए? आज ब्रज के भक्त समाज अनाथ हो गया। उनको केवल सूखे पत्ता चबा कर रहना पड़ेगा, रस तो मिलेगा ही नहीं, सूखे पत्ता चबा करके जीवन धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार तत्कालिक जो विशिष्ट ब्रजवासी संत थे ये उनका उद्गार है। तो इसे महाप्रभु के नित्य पार्षद साक्षात श्री उपमंजरी और अपने यह लीला में महाप्रभु के साथ आकर के इस प्रकार हमारा कल्याण अर्थे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले, स्वयं महाप्रभु के मनमांछा को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम में अपनी लीला कृत करके चले गए। वो हमारा ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये उन्हीं के अनुगमन के अनुसार उनके पदांक चिन्ह से अंकित हो करके आगे चल रहा है। उनके निर्देशन में प्रभुपाद जी ने अपने उपदेशामृत ग्रंथ, उनके अनेक ग्रंथों की तालिका है, क्या बताऊं, उपदेशामृत ग्रंथ के अमुख में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले लाइन में लिख रहे हैं हमारा जो स्कन सोसाइटी है ये रूप गोस्वामी के निर्देशन में चल रहा है, उनके संग्रहण में चल रहा है, अंडर हिज सुपरविजन। ये संघ हमारे संस्थापक आचार्य के उद्गार है। भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद अपने अंतिम समय में जब अंतिम श्वास ले रहे थे तब अपने वरिष्ठ भक्तों से यही आशा किए थे, मुझे एक भजन गाकर सुना दे। सभी ने आकर बोले प्रभुपाद क्या सुनना चाहते हैं, क्या कोई ये कोई विशेष विशेष बात? उन्होंने बोले नहीं 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 नहीं, मुझे एक भजन सुना दे। श्रीधर महाराज को चुना गया था वही भजन जो प्रभु जी ने गाए, श्री उप मंजरी पद सही मर संपद सही मर भजन पूजन। अंतिम श्वास छोड़ते छोड़ते भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसी को सुन करके श्रेय छोड़ते। तो इसलिए हम जिस अयोग्य व्यक्ति उनके भजन उनके पठन उनके शिक्षण के नित्यांत अधिकारी होते हुए भी उनके तिथि में उनके लीला के श्रवण पठन के द्वारा ही इनके कृपा के लेश को आशा ही कबल कर सकते हैं, यही आशा रख करके आज वाणी के बीमार विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की।